Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
वेलकम पुनीत.
थैंक यू राजेश. थैंक यू सोनू.
और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख.
मोस्ट एशियन इंडस्ट्रीज एंड ऑन नेगेटिव नोट. Global crude oil prices rise and in bullion market gold and silver prices trade higher.
अधिकांश एशियाई बाजारों में आई गिरावट, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि और सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी.
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और अब शुरुआत करते हैं शेयर बाजारों से. अधिकांश एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 4.3% लुढ़क गया. जापान के निकेई सूचकांक में 1.6% की गिरावट आई. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% के नुकसान में रहा. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई. हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% से अधिक बढ़कर बंद हुआ. प्रमुख यूरोपीय बाजार आज तेजी पर थे. लंदन का फुटसी 1%, जर्मनी का डैक्स 0.9% और फ्रांस का कैक 0.6% से अधिक की बढ़त पर कारोबार कर रहे थे. मार्च 2026 में फरवरी के 1.9% से बढ़कर 2.5% हो जाने का अनुमान यूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टैट के फ्लैश अनुमान से पता लगा. यूरोपीय केंद्रीय बैंक के 2% अनुमान के मुकाबले ये कहीं अधिक है. अमेरिका और इसराइल द्वारा फरवरी के अंत तक ईरान के खिलाफ सैन्य संचालन शुरू करने के बाद ऊर्जा मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण ये अनुमान बढ़ गए हैं. यूरोस्टैट ने कहा कि मुद्रास्फीति के आंकड़ों में ऊर्जा में वृद्धि मार्च में 4.9% बढ़ जाने का अनुमान है. फरवरी में इन मूल्यों में 3.1% की गिरावट आई थी.
US stocks displayed mixed trend yesterday as the U.S. President Donald Trump's new warning to Iran and a widening of West Asia conflict offset optimism over his comments on discussions with Tehran. The tech-heavy Nasdaq Composite Index dropped over 0.7% and the S&P 500 lost 0.4%. Conversely, the Dow Jones Industrial Average rose 0.1%. Earlier, during a moderated discussion at Harvard University, U.S. Federal Reserve Chair Jeremy Powell described how the ongoing U.S.-Israel conflict involving Iran is influencing the Fed's outlook. He noted that long-term inflation expectations remain stable despite the current energy shock. Regardless of the uncertainty, Powell hinted that the Fed is not rushing into immediate policy shift. He said the central bank can wait to see how the ongoing conflict affects the economy and inflation. Puneet, very interestingly what Jeremy Powell said, that there will not be any immediate policy shift and long-term inflation expectations remain stable, according to him.
So interesting observation, I think, because there is this fear that oil shock, which we are seeing, and not just in US, it is across the world, particularly Asian countries, which are really affected by supply disruptions from West Asia. There we can see a lot of impact on inflation, on consumption patterns. In the US, there is definitely a secondary effect, because we've seen energy prices go up in US also. But again, I think the policymakers believe that this is a short-term impact. And if this war prolongs, then I think maybe the impact will be more long-lasting.
So if the US and European bond yields stay elevated because central bank you know, is most likely, even Jeremy Powell is going to delay rate cuts and amid persistent war-driven inflation. How does that change the risk reward for Indian assets and global portfolios?
So interesting, two parts to this question really. First is, of course, this whole the fluid situation is being reflected in the 10-year bond yields in the US. So before Powell's comments yesterday, the US 10-year bond yield was at 4.45, which is quite a dangerous level, which is very high in the US scenario.
They've set it at 4, I think.
No, so they really wanted closer to 3, 3.5. Okay. That is a comfort zone, but 4.45 is really high for US. But after his comments, the bond yields fortunately went down from 4.45 to 4.3. So it shows that markets believe that what the Fed chair is saying is right, because if they did not believe him, the yield would still be high. And it also, if you have high bond yields in the US, then money will go to US and will not go to the other emerging markets. So my belief is that if the US bond yields after these comments they soften and the interest rates in US remain somewhat soft, then we will see some money flow into Asian markets. But right now, that is a big if, right?
और यूरोप में अगर हम देखें तो वहां पर जो इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस आए हैं मार्च के लिए, जो अनुमान आए हैं 2.5%, 1.9% से बढ़कर सीधे 60 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने अनुमान लगाया है, क्या लगता है आपको इन्फ्लेशन, हालांकि यूएस के जो फेड चेयर हैं उन्होंने कहा है कि उनको आशा है कि यूएस पे इन्फ्लेशन पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको लगता है कि एशिया और यूरोप पर पूरा ब्रंट आएगा?
बिल्कुल सोनू, देखिए पहली बात यह है कि यूरोप के लिए हमको लगता है 2.5% इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है आपको, पर यूरोपीय जोन के लिए, यूरोपियन नेशंस के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी नहीं है, बहुत मॉडरेट ग्रोथ होती है। अमेरिका में आप देखेंगे इन्फ्लेशन रेट 3% के ऊपर है, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है, वो इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर सकती है। और एशियाई इकोनॉमी में देखिए, आप जो कोरिया का मार्केट, अगर आपने पहले खबर पड़ी थी, आज भी वो 4.5% गिरा, वो ऑयल प्राइसेस को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव मार्केट है। और वहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही वेस्ट एशिया में वॉर शुरू हुई, काफी बड़ी गिरावट आई। तो देखिए, अलग अलग देशों पे, यूरोप पे अलग असर पड़ रहा है, कोरिया पे या जापान पे अलग असर है। भारत में हालांकि हमने कुछ शेयर मार्केट में आप देखेंगे उतार चढ़ाव हुए हैं, पर मैं ये कहूंगा कि काफी स्टेबिलिटी है कंपैरेटिवली दूसरे देशों को जब देखते हैं, तो मुझे लगता है भारत में भी स्थिति जो है काफी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेबल है कंपेयर टू अदर एशिया।
और आपको लगता है कि ये एक साइकिल हम हर बाजार में देखेंगे कि गिरावट आएगी, जैसे यूरोप में आज थोड़ा पॉजिटिव है, फिर वैल्यू बाइंग होगी, फिर ऊपर जाएंगे बाजार, फिर नीचे आएंगे, तो एक रेंज बाउंड आपको लगता है वॉलेटिलिटी होगी?
तो सोनू, इसमें सवाल ये आता है कि जो स्मार्ट मनी है, जो ज्यादा बड़ा पैसा है, स्मार्ट पैसा है, वो क्या कर रहा है अभी बाजारों में? पहले वो पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो जैसे भारत के बाजारों में जहां वैल्यूएशन बहुत हाई थी, पी मल्टीपल निफ्टी का 25-26 के ऊपर हो गया था, जो कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आसपास चल रहा था, वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स माल बेच रहे थे, शेयर्स बेच रहे थे, और करीब करीब इसी वर्ष में 2,00,000 करोड़ रुपए का माल FIIs ने बेचा है, शेयर्स बेचे हैं भारत में। और अब वो जो पी मल्टीपल है वो 20 के नीचे आ गया है, तो उनके लिए अब अट्रैक्टिव हो गया भारतीय बाजार। दूसरा, जो रुपी डॉलर की वजह से रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, उससे भी उनको 10%, वो भी एक फायदा हुआ है वो इन्वेस्टर्स के लिए, जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे उनके लिए। तो मुझे लगता है कि अब कंसोलिडेशन, एक जो आपने कहा कि कुछ स्मार्ट मनी है जो नीचे भाव पर माल शेयर्स लेंगे, ऊंचे भाव पर शायद थोड़ा ट्रेड करें, पर मुझे लगता है कंसोलिडेशन का एक टाइम आ सकता है कि वैल्यू बाइंग अब यहां पर इमर्ज हो सकती है।
We're talking about inflation in Europe and in other parts of Asia, particularly to India. What will happen when it comes to inflation?
So, Rajesh, I think in the short term, we will have to deal with higher inflation. I don't think there is no wishing away from higher inflation at this stage, because there's a huge disruption in supply chains right now. Fortunately, again, I would say, the common man is feeling the pinch, but not that much of a disruption. But if you look at across the industrial spectrum, you see a lot of factories shutting down because of lack of supplies, energy supplies. We've heard about in the construction industry, in ceramics, in fertilizers. So there's a huge impact on output in the industrial sector. We will have to deal with less supplies, higher inflation, and if we get through these 2-3 months with no major disruptions in normal life, I think it will be a great achievement. But I think we should be prepared for higher inflation and some difficult times going
forward. So, Puneet, आपको लगता है कि अभी single most factor जो हमारे बाजार को, दुनिया भर के बाजारों को जो impact कर रहा है, वो इस conflict की situation ही है या कोई और भी factors emerge हो सकते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी तो economic disruption ही कारण है. और बाजारों की खासियत होती है, stock markets की खास तौर से, कि वो आगे की जो स्थिति है उसको anticipate करके पहले ही react करते हैं. तो अभी मान लीजिए कि आने वाले 2-3 महीने हमको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहेगी और डिसरप्शन होंगी और नुकसान होगा, पर मार्केट्स ने वो एंटिसिपेट कर लिया. ऑलरेडी आप देखेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड मार्केट्स में काफी गिरावट आई है, और जैसे ही मार्केट्स ये एंटिसिपेट करना शुरू करेंगे कि ये इसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी मियाद जो है, जो टाइम है, वो 1 महीना है या 2 महीने, तो आप देखेंगे मार्केट्स इंप्रूव होना शुरू होंगी. आज अमेरिका में यूएस फ्यूचर्स जो है, डाउ जोन फ्यूचर्स है, वो काफी बढ़े हुए हैं. 500-600 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब ये जो लड़ाई है ये आगे आने वाले समय में इसमें थोड़ी कमी आएगी. तो मार्केट्स का जो बिहेवियर है वो हम सीधे, वो थोड़ा सा एडवांस चलता है, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ प्री इंडिकेटर टू व्हाट इज गोइंग टू कम. तो मुझे लगता है कि मार्केट्स ने अभी जो स्थिति है उसको डिस्काउंट किया हुआ है, लेकिन अगर ये बढ़ती है लड़ाई तो, पर अभी शॉर्ट टर्म में आपका जो सवाल है उसका जवाब यही होगा कि हाँ, ये जो सेंटिमेंट है वो तो लड़ाई और पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल प्राइसेस, भारत के लिए क्रूड ऑयल प्राइसेस और रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट, ये दो सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक्स हैं जिसके बेसिस पे ये सेंटिमेंट.
पुनीत, व्हाट इज योर बेस केस फॉर हाउ दिस वॉर reshapes the global growth and inflation map over the next 12 to 18 months?
So, Rajesh, this is an extremely important question and very difficult to answer, honestly. One thing is for sure, that post this conflict, this whole economic map, the entire political map, geopolitical map is going to be reset. The relationships will be redefined. Can you imagine that US wants to, you know, send its planes over Italy or France, and they are refusing airspace to USA to fly the military planes through their airspace? So I think these relationships, economic relationships are going to be, and political relationships will be reset. We do not know how finally this whole thing will, you know, settle down. But definitely, I think there's going to be a reordering of the world order, definitely, and this conflict has accelerated that.
और अब बात करें भारतीय बाजार की, तो श्री महावीर जयंती के कारण आज भारतीय शेयर बाजार बंद रहे. बंबई शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर इक्विटी डेरिवेटिव्स, प्रतिभूतियों का उधार और लेन देन, मुद्रा डेरिवेटिव्स और ब्याज दर डेरिवेटिव्स में कारोबार बंद रहा. इस बीच भारतीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार कमोडिटी सेगमेंट में सुबह के सत्र में कारोबार बंद रहा, हालांकि शाम 5 बजे से कारोबार फिर से शुरू हुआ. कल वित्त वर्ष 2026 के अंतिम सत्र में बेंचमार्क घरेलू शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 1636 अंक गिरकर 71948 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 488 अंक कम होकर 22331 पर बंद हुआ.
Sensex plunged over 7%, marking its worst annual performance since FY20, when the COVID-19 pandemic triggered a global equity sell-off. Nifty 50 fell over 5% in FY26, registering its first annual decline in 3 years. Sensex hit its highest level on 1st of December 2025 when it touched 86,159 during intraday trade, and NSE 50/50 registered 26,373 level on 5th of January this year during intraday trade. Conversely, the lowest levels were registered on 7th of April 2025, with Sensex declining to 71,425 and the Nifty touching 21,744 level during intraday trade. Markets remained under pressure through most of FY26 due to tariff concerns and foreign outflows, with the Western Asian conflict adding to the woes. Puneet, we have given you a whole lot of figures. What's your outlook on the domestic equity indices, which wrapped up the year 2026 on a very weak note?
So, Rajesh, you're right. I mean, so this was not a particularly good year for equities. Interestingly, you mentioned that for the full year, Sensex went down by about 7% and Nifty fell about 5%. But if we exclude March, actually the index, both the indices were higher for the year. And it, in the month of March, they have gone down by about 10%. So if we just exclude March and this West Asia conflict from the equation, you will see that FY26 was not that bad a year for the markets. Secondly, if you look at past 2 years, then Nifty and Sensex are at the levels that they were in 2024. So clearly, to some extent, there was a froth in this market, I believe. There was higher PE multiples. There was too much bullish sentiment in the markets. And so markets have consolidated. If I look at a two-year period, of course, short-term, last 1 month. And another very important fact I will just like to point out here. If you look at the entire financial year, we just spoke about foreign investor selling. So total FII selling in this year was about 1.8 lakh crores. Out of that, 1.3 lakh crore was sold in March alone. So you can imagine that this month of March 2026 has been a very, very important, very, very difficult year for this market.
In fact, in February, unhone net kharidari ki thi.
Bilkul.
Lekin bilkul trend reversal ho gaya, which happened in the entire world.
हाँ बिल्कुल, बिकॉज तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट है, इसका कितना बड़ा असर बाजारों पर पड़ा है हर प्रकार से.
पर अगर हम पूरे जो वित्त वर्ष था जो भी आज समाप्त हो रहा है उसको देखें, तो आपको लगता है कि एक तो जो टैरिफ टैंट्रम्स जिसे कहा जाता था, और साथ में ये एक डबल वैमी रही, एक बहुत ही संकटग्रस्त कह सकते हैं कि बाजारों के सेंटिमेंट के लिए ये वर्ष रहा.
नहीं बिल्कुल, तो 2026 का वर्ष ऐसा है जो इन्वेस्टर्स भूलना चाहेंगे. It is a year that we would like to forget because इस साल बहुत ज्यादा uncertainty रही US से. बिल्कुल शुरुआती दौर में अप्रैल के महीने पिछले साल हमने टैरिफ टेंट्रम शुरू हो गया, वहां पर काफी वॉलिटिलिटी भी थी. उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आई तो हमने फेड में, तो काफी ज्यादा इसमें जो इनस्टेबिलिटी या चिंताएं की बात थी वो हमने यूएस मार्केट से, वेस्टर्न मार्केट से, वो हमारे
पास जो लोएस्ट लेवल था वो भी हमने अप्रैल में देखा था.
बिल्कुल. और साथ ही एक अच्छी खबर भी थी, वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को लेकर काफी यूफोरिया था मार्केट्स के अंदर. बहुत बड़ा पैसा वहां पर निवेश हुआ, इन्वेस्ट हुआ. तो मुझे लगता है ये चर्न का साल था. हालांकि ओवरऑल आई थिंक इट इज बेस्ट फॉरगॉटन देन रिमेंबर्ड.
बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भरोसा तो बना रहा बाजारों में इस वर्ष भी.
देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कमाल की बात यह है कि इतना, जैसे हमने कहा कि इतना मुश्किल साल था, काफी चिंताएं भी थी और काफी नेगेटिव न्यूज थी, लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लोस थे वो बने रहे. हालांकि फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी बड़े पैमाने पर सेलिंग कर रहे थे, लेकिन करीब करीब हमारा अनुमान यह है कि 4 से 5 लाख करोड़ रुपए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया पिछले एक साल में. तो मुझे लगता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो काफी उनका भरोसा फिलहाल तो बना हुआ है मार्केट.
सो हाउ वल्नरेबल आर इंडियाज करंट अकाउंट एंड फिस्कल मैथ इन गिवन सिनेरियो.
So current account, see, we were in a comfortable zone until a few months back, and suddenly we have two issues. Of course, our crude oil imports, which is a huge item of our current account. So they have kind of almost gone up by 50-60%. So it's a big outflow. Secondly, there's a question mark on our remittances which are coming in from abroad, because most of the remittances for India come in from West Asia. So I think we will have some pressure on the balance of payment or the reserves, foreign exchange reserves. Fortunately, the latest data from RBI shows that we haven't seen a very big drawdown in forex reserves as of now. We have about $700 billion of forex reserves, which is comfortable. But definitely, current account deficit will take a hit in this year.
So do you think, to what you were just said, does the RBI have the room to say focused on growth?
So RBI is a very difficult task. And I think nobody would want to be in RBI governor's chair, shoes right now.
Right.
Because on one hand, you're going to have this inflationary pressures, huge inflation pressures. We have a rupee depreciating, so he cannot cut rates to support growth, because if you cut rates, rupee will depreciate even more. So the tendency of the RBI governor would be to actually raise rates.
So
at the current level,
force, but more hawkish stance going forward.
I think they will take a hawkish stance, but I don't think they will raise rates. So it will, RBI would like to talk up the sentiment a bit and say, okay, don't raise your inflation expectations. But I don't think RBI would want to raise rates. But again, like I said, balance of convenience would be to raise rates. But not a easy task to do right now.
And Puneet ji, briefly, आपको क्या लगता है अभी इस वित्त वर्ष में रियल्टी और आईटी सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर्स रहे और सबसे मजबूत रहे मेटल एंड ऑटो, अब आपको क्या आशा है आने वाले वर्ष से?
देखिए, मुझे लगता है कि जहां पर ज्यादा हमने तेजी, अगर आईटी के शेयर्स देखें या रियल्टी खासतौर से, तो कुछ स्पेकुलेटिव बबल था उसके अंदर, तो वहां वैल्यूएशंस काफी नीचे आई हैं। मेटल्स में देखिए, जो इन्फ्लेशनरी, जब भी इन्फ्लेशन आता है और जो हम देख रहे हैं disruptions, तो हम देखते हैं कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में कमोडिटीज विल डू बेटर।
सो पुनीत, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी रिस्पॉन्स फ्रॉम फ्यूल टैक्सेस टू स्ट्रेटेजिक रिवर्स एंड टारगेटेड सब्सिडीज वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली इफ द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज?
सो आई थिंक गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक लाइफ इजियर, बिकॉज इन दिस टाइम्स ऑफ यू कैन नॉट फाइट इन्फ्लेशन, देयर इज एन इन्फ्लेशन प्रेशर राइट नाउ, गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट रियली सिग्निफिकेंटली, बट दे कैन ईज द पेन फॉर द कॉमन मैन, विच वॉट दे आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ, मेंटेन सप्लाईज, कीप दिस फियर ऑफ शॉर्टेजेस अवे फ्रॉम कॉमन पर्सन, आई थिंक दैट इज मोस्ट।
और अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले बिना किसी बदलाव के 94.81 रुपए प्रति डॉलर पर स्थिर रहा। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 100.25 पर था। जो डॉलर की हम मजबूती देख रहे हैं सभी करेंसीज के मुकाबले, आपको लगता है ये और बढ़ेगी क्या इसके कारण है?
देखिए, इसका मुख्य कारण है जो बॉन्ड यील्ड, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में बढ़ी है, या अगर आपको अमेरिकन बॉन्ड्स में 4.5% या 5% ब्याज मिल रहा है तो क्यों लोग यहां पैसा लगाएंगे? सारा पैसा दुनिया का अमेरिका के बॉन्ड्स में हो जाएगा, वो भी हम देख रहे हैं। और जैसे ही अमेरिका में बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी कम आएंगी, तो मुझे उम्मीद है कि वापस डॉलर इंडेक्स भी घटेगा और जो करेंसीज है उसमें भी स्टेबिलिटी आएगी। तो इसका खास जो लिंकेज है फिलहाल शॉर्ट टर्म में, वो क्रूड ऑयल से है और जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट है उसके साथ है।
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant of Kaynes Semiconductor in Sanand, Gujarat today. While inaugurating this plant during a one-day visit to Gujarat, he said that the production to be done by this plant is an important achievement in the field of semiconductors. He said that the chips to be manufactured in this plant will reach America. The Prime Minister remarked that today's milestone truly embodies the mantra of Make in India, Make for the World. Mr. Modi said that efforts are being made to make a system so that India's requirements of semiconductors is met from within the country itself.
इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। इस फेज का फोकस भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स के प्रोडक्शन पर है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है, ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सकें।
लेते हैं अगली खबर। देश भर में प्राकृतिक गैस पीएनजी के विस्तार में तेजी बनाए रखने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पीएनजी अभियान के दूसरे चरण को इस वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया है। सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स से घरेलू पीएनजी कनेक्शंस में तेजी लाने के लिए कहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि मार्च माह के दौरान घरेलू, वाणिज्यिक, छात्रावास, मेस और कैंटीन सहित 31 लाख से अधिक कनेक्शनों को गैस युक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त 27 लाख से अधिक नए कनेक्शन दिए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 1 मार्च से औसतन प्रतिदिन 5 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी का पर्याप्त भंडार है। इसके साथ ही राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सही जानकारी प्रसारित करने का आग्रह किया गया है। ये जो पीएनजी कनेक्शन को पुश मिल रहा है, जिससे एलपीजी पर डिपेंडेंस थोड़ी कम हो, आपको लगता ये बहुत बड़ा एक शायद पॉजिटिव आउटकम होगा इस पूरी आपदा का?
बिल्कुल सुनू, मुझे लगता है कि ये जो एक बहुत बड़ी हमको एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए और पर्टिकुलरली हाउस होल्ड सेक्टर में, वो एक बहुत बड़ा पुश है। ये भारत का नेचुरल गैस में थोड़ा पोजीशन जो है वो आसान है। एलपीजी में ऑल्दो हम करीब 50-60% एलपीजी ऑलरेडी प्रोड्यूस करते हैं भारत के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट की, बाकी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, पर नेचुरल गैस में हमारे पास काफी ज्यादा सुविधा भी है और हम वो उसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं।
और एक आपसे जो प्रधानमंत्री ने जो सानंद में किया है सेमीकंडक्टर मिशन कंपनी का उद्घाटन, इतनी तेजी से जो सेमीकंडक्टर मिशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सराहनीय है?
देखिए, सराहनीय भी है. अगर डेटा इज द न्यू ऑयल, तो सेमीकंडक्टर्स उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. बिना सेमीकंडक्टर्स के डेटा बिजनेस नहीं चल सकता. तो भारत को यदि डेटा के ऊपर अपना हक जमाना है या डेटा को मास्टरी करनी है, तो उन्होंने चिप इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर हमें प्रभुता हासिल करनी होगी.
Moving on, the Reserve Bank of India has postponed the implementation of its new rules on capital market exposure by 3 months. The revised deadline is now July 1, 2026, instead of April 1. The central bank said their decision comes after requests from banks, capital market intermediaries and industry bodies which sought more time and clarity on certain operational issues. The amended guidelines were originally issued in February this year. They aim to make it easier for banks to finance acquisitions by Indian companies, streamline lending limits against shares and similar instruments, and introduce a more principles-based approach for lending to market intermediaries. The RBI has also clarified rules related to acquisition finance. Their definition now includes mergers and amalgamations, and such financing will be allowed only when acquiring control of a non-financial company. Puneet, could you please elaborate on the new definitions of acquisition finance and the amended guidelines that RBI is talking about?
So interestingly, in India, I think the centerpiece of this is that the Indian banks were not allowed to finance mergers and acquisitions by Indian companies, but foreign banks would actually do it in India. So this was a huge gap, and RBI, I think, has, by opening up this sector, I think we are looking at major corporate action in coming years.
Global crude oil prices were trading with gains today. Brent crude was trading 0.3% up at $107.75 per barrel, while West Texas Intermediate crude was also trading 1% higher at $103.96 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 1.3% up at 1,49,450 rupees per 10 grams, while silver was trading 3.2% higher at 2,37,180 rupees per kilogram a short while ago.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक जून अनुबंध वाला सोना 1.2% से अधिक की बढ़त के साथ 1,49,447 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और मई अनुबंध वाली चांदी भी 3.5% वृद्धि के साथ 2,37,000 रुपए प्रति किलो पर थी. हालांकि आज हमने बढ़त देखी है, लेकिन जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि उस तरह से बढ़त नहीं आई है इतने क्राइसिस सिचुएशन में. आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पहले से ही ओवर वैल्यूड थे?
दूसरा, हमने जो अभी खबर आई है पिछले एक दो दिन में, वो ये आई है कि रशिया ने बहुत बड़े पैमाने पर सोना बेचा है. अबाउट $38 बिलियन का सोना उन्होंने बेचा जब प्राइसेस बढ़े थे. और मुझे लगता है जो वॉर सिचुएशन है, तो इसमें कुछ हद तक जो प्रेशियस मेटल्स की सेलिंग करके कंट्रीज जो है वो पैसा रेज कर रही है, तो मुझे लगता है कंसोलिडेट करेगा. और ओवर वैल्यूएशन जो थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अब वो काफी हद तक उसमें जो बबल था वो खत्म हो गया है.
सो टुमारो, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट?
सो आई थिंक देयर विल बी रीबाउंड. ऑनेस्टली आई थिंक वी आर नाउ इन अ कंफर्ट जोन वेयर देयर विल बी वैल्यू बाइंग इन द मार्केट्स, एंड माय एक्सपेक्टेशन इज दैट मार्केट्स विल कंसोलिडेट विद एन अपवर्ड बायस इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स.
सो इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी, आप आए और आपने विभिन्न विषयों पर हमसे इतनी विस्तृत चर्चा की.
धन्यवाद सोनू.
थैंक यू पुनीत फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन. Most Asian indices end on negative note. Global crude oil prices rise, and in bullion market, gold and silver prices trade higher.
अधिकांश एशियाई बाजारों में आई गिरावट, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि और सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी.
That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.